خداوند یسوع مسیح کے پاک اور جلالی نام میں آج کی صبح پھر خداوند خدا ہم سب کو برکت دے اور سب سب کی سلامتی ہو. تو آئے ہم سب خداوند اپنے خدا کے دور جھکے تاکہ اپنے دل اور دماغ اور سوچ اور خیالات خداوند یسوع مسیح کی طرف لگائیں تاکہ ہم روح اور سچائی سے خداوند اپنے خدا کے کلام کو سننے والے بنے تاکہ ہماری زندگی میں اس کا کلام عزت اور جلال پائے اور یسوع مسیح کے نام کی تعریف ہو. اے باپ یسوع کے نام میں میرا شکر کرتے ہیں تیرے پاک روح کے لیے تیرے پاک کلام کے لیے لشکروں کے رب آج کا کلام ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو. ہم پڑھیں سنیں اور خدا خدا اس پر عمل کریں ہماری زندگیوں میں ہر طرح کی خدا خدا کرنے کی ضروری کو دور کر یسوع مسیح کے نام میں دعا مانگتا ہوں. جیسا کہ ہم سیکھ رہے ہیں کہ اس پورے ہفتے میں یروشلم میں کیا کیا ہوا جب یسوع مسیح شہادت داخلہ کے طور پر شہنشاہ کے طور پر یروشلم میں داخل ہوا. تو ہم نے دیکھا تھا کہ اتوار کے دن یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوتا ہے اور وہاں پر کیا کیا جاتا ہے, یسوع مسیح وہ نبوت پوری کرتا ہے جو نبیوں کی مار پر کہا گیا تھا کہ دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے جو دادو یعنی کہ گلی گلی کے بچے پر سوار ہے, وہ حلیل ہے اور کیا ہے جی روتن ہے, وہ ابن داؤد ہے. تو یہ ہوا اور یسوع مسیح نے سارا دن یروشلم میں گزارا اور اس کے بعد رات گزارنے کے لیے بیتانیہ کے گاؤں میں گیا اور اگلی صبح جا کر یسوع مسیح نے سوموار کی صبح جب آپ دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح نے انجیر کے درخت پر لعنت کی کیونکہ یسوع کو بھوک لگی اور وہ پھل ڈھونڈنے کے لیے گیا اور اسے پھل نہ ملا. یہ تصویر ہے یسوع مسیح اسرائیل کے پاس آیا اور اسرائیل نے وہ پھل نہ پایا جس کے لیے یسوع مسیح آیا تھا اور وہ اس برکت سے محروم رہ گئے جس کے لیے خدا نے اسے بھیجا. اور اس کے بعد پھر یسوع مسیح پھر ہیکل میں آتا ہے اور ہیکل میں حالات کو دیکھ کر کہ فقیوں فریسیوں نے اس وقت کے استادوں اور رہنماؤں نے اور ٹھیکے داروں نے خدا کے گھر کو کیا بنا لیا جی, ڈاکوؤں کی کھو بنا لیا. انہوں نے وہاں پر چیزوں کے اڈے لگا لیے کہ جی یہاں پر یہ بھی دیکھنا چاہیے, یہاں پر یہ بھی سہولت ہونی چاہیے. انہوں نے پرستش کو پرستش نہیں بلکہ کاروبار بنا لیا. اگر تم نے اپنے گناہوں کا کوئی مرد یا عورت سفر کرتا ہو کسی دوسرے شہر سے گاؤں سے آتا تھا وہ کوئی شہر ساتھ لے کر نہیں آ سکتے تھے تو کیا کیا جاتا تھا, ان کے لیے سہولت مہیا کرتی کہ آپ یہاں پر کیا کر سکتے ہو جی, اپنی ضرورت کی چیزیں خرید سکتے ہو تاکہ آپ یہاں پر کی قربانی کو خرید سکیں. اور وہ قربانیاں مہنگی ملتی تھی اور بہت دفعہ ان میں بےمانی ہوتی. اگر کوئی دوسرے علاقے سے آتا تھا تو وہ اپنے سونے چاندی کے سکوں کو تبدیل کرتا تھا, اس پر زیادہ تبدیلی پر پیسے کام دیے جاتے تھے. تو بہت سی ایسی باتوں کو شروع کر دیا اور یسوع مسیح کیا کرتا ہے سوموار کی دن غالباً دوپہر کے دن جب اس سے پہلے کہ شام ہو یسوع مسیح ہیکل پہ جاتا ہے اور کوڑا بنا کر وہاں پر سب کچھ الٹا دیتا اور کہتا ہے کہ میرا گھر سوموار کا گھر تھا لیکن تم نے اس کو کیا بنا لیا ڈاکوؤں کی کھو بنا لیا. اور سوموار کے بعد منگل کو دیکھتے ہیں یسوع مسیح کے اختیار پر سوال و جواب کیے گئے کہ جو کام تو کرتا ہے وہ کس اختیار سے کرتا ہے, تجھے کس نے اختیار دیا. یسوع سوال کرتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ یوحنا کا بپتسمہ کس کی طرف سے تھا, انسان کی طرف سے یا تھا یا خدا کی طرف سے. تو فقی فریسی اور ربی اور بزرگ خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ غلط ہے. اگر وہ کہیں انسان کی طرف سے تو سب ان کو سنسار کریں گے, پتھر ماریں گے اور کہیں گے کہ تم نے یقین کیوں نہ کیا. اور ان کو پتا تھا وہ خدا کی طرف سے نبی تھا اور انہوں نے اپنے دلوں کو سخت کر دیا. ये हुआ और उसके बाद फिर इसी बुध मंगल के दिन सवारी मंगल के दिन यीशु मसीह ने नबूवत की कि इस जगह पर पत्थर बाकी ना रहेगा और वो कलाम पूरा हुआ 70 ईस्वी में 70 ईस्वी यानी के एडी आफ्टर जीसस क्राइस्ट वो नबूवत पूरी हुई जब रोमियो ने महाज किया मुखालफत की अकट्ठे हुए और उन्होंने यरूशलेम को क्या किया जी घेर दिया तबाह हो बर्बाद किया। तो अब तक ये हुआ है आज बुध बुध के दिन क्या हुआ बुध के दिन बहुत कुछ हुआ लेकिन मैं चाहूंगा कि आपको छोटी छोटी तस्वीरें दिखाऊं ताकि हमें पता हो कि क्या हुआ है क्योंकि पिछले मुझे नहीं पता कितने सालों से हम ईदें मनाते आए हैं और हमने क्या सीखा है सिर्फ खजूरी एतवार के दिन यीशु मसीह यरूशलेम में गया है और उसके बाद दोबारा मुलाकात कब हुई है जी जब हमने ईद पर या गुड फ्राइडे पर इबादत करनी है ऐसा ही ना जी पहले कभी नहीं बताया कि इन 5-7 दिनों में क्या क्या हुआ तो बुध के दिन क्या हुआ है बुध के दिन बहुत से काम हुए हैं मेरे साथ निकाले मत्ती के जी उसका 26वां बाप सारा का सारा ये बुध के दिन को रिकॉर्ड किया गया है कि बुध के दिन उस वक्त उस जगह पर क्या हुआ जो यरूशलेम का इलाका था। पहली बात 26वीं आयत की जब पहली हम 2 आयात पढ़ते हैं तो यहाँ यीशु के खिलाफ क्या है जी साजिशबाजी हो रही है साजिश की जा रही है कि कैसे पकड़ा जाए। पहली आयत आपके लिए पढ़ता हूँ और जब यीशु ये सब बातें खत्म कर चुका तो ऐसा हुआ कि उसने अपने शिगिर्दों से कहा तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद ईदें फसा होगी। तो जुमे के दिन क्या है जी ईदें फसा है तो बुध का दिन है ये जिसे आज हम मना रहे हैं क्योंकि जुमे के शाम को ईदें फसा मनाई जाएगी जिसे हम कहते हैं बाला खाना में जहां पर पैर धोने की रस्म और जहां पर आखिरी फसा खाया गया। तो यीशु मसीह अपने शिगिर्दों को क्या कहता है 2 दिन के बाद इसे ईदे फता होगी और इब्ने आदम मसलूब होने को पकड़वाया जाएगा। जैसे ही यीशु ये बात कर रहा है उसके खिलाफ क्या हो रही है जी साजिश हो रही है। तो ये बुध के दिन बात यीशु मसीह ने की और हुआ और तीसरी आयत में लिखा है उस वक्त सरदार काहिन और कौम के बुजुर्ग कायफा नाम सरदार काहिन के दीवान खाना में जमा हुए। यहां पर यीशु बात कर रहा है और वहां पर यीशु के खिलाफ साजिश हो रही है। ठीक ऐसे जैसे ड्रामों में दिखाते हैं कि यहां पर कोई सोच रहा है और वहां पर उस सोच को बयान किया जा रहा है कि कहां पर कुछ हो रहा है। ठीक खुदावंद यीशु मसीह जानता है हर एक चीज को। जब हम दुआ में बैठे होते हैं वो जानता होता है कि हमारा दिल हमारी सोच हमारे ख्याल किस तरह मुखलिस होकर उसकी इबादत कर रहे हैं। वो जानता होता है कि हम कैसे तवज्जो के उसकी बात को सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। तो यहां पर ये हो रहा है और मशवरा किया कि यीशु को फरेब से पकड़कर कत्ल करें मगर कहते थे कि ईद में नहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बदवा हो जाए। तो 26वें बाप में बुध की शाम ये साजिश हो रही है और उसके बाद क्या हुआ इस दिन में क्या हुआ बैतनिया में यीशु पर असर डाला जाता है। यीशु मसीह के कफन दफन के लिए क्या किया जा रहा है जी तैयारी की जा रही है। सारे शिगिर्द ईदे फसा के बारे में तैयारी कर रहे हैं सोच रहे हैं। ईदे फसा दरअसल क्या है ईदे फसा बाइबल मुकद्दस में पुराना अहदनामा में बयान करता है जब यहूदी 400 साल की गुलामी से इसराइल का खुदा उनको निकाल कर लाया जब वो मिस्र में थे तो वो इस दिन को मनाते थे जिसमें करवा साखा जो 400 साल की उनकी कड़वी जिंदगी को जो उन्होंने गुलामी के में गुजारी थी उसको और उसके बाद जो हुक्म खुदा ने दिया था कि तुम अपने खानदान समेत बर्रे को लेना कुर्बान करना और उसका लहू अपने दरवाजों की चौखट पर लगाना ताकि जब मौत का फरिश्ता शहर में से गुजरे तो तुम्हारा कोई भी जानवर या तुम्हारा कोई भी बेटा या बेटी जो पदोंता हो जिसे हम कहते हैं पलेसी का जैसे बादल पर गरजना शुरू होते हैं, बिजली गरजना शुरू होती है, तो हम अपने बच्चों को दवा क्या कहते हैं, आप प्लेटी की हो, प्लेटे के हो, अंदर चले जाओ, आप पर बिजली ना गिर जाए। तो खुदा ने हुक्म दिया था उनको कि कोई पलोठा बाहर ना निकले जब मौत का फरिश्ता शहर में से गुजरे, ताकि तुम्हारा कोई भी बेटा बेटी जानवर ना मरे। और उनको हुक्म था कि तुम खून को अपने दरवाजों पर लगाना। अब्रानी का जब लफ्ज देखते हैं कि खुदा के मूसा नबी ने उनको कहा कि बर्रे को कुर्बान करके खून किस तरह लगाना, अपने दरवाजों की चौकों के उतरे उतरे शतीर पर और साइडों पर। और जब इसे तस्वीर में देखा जाए तो ये क्या बनता है, यीशु मसीह की सलीब बनती है कि उस दौर में बर्रे में और आने वाले दिनों में जिसे आज हम दो तीन दिन में मनाएंगे वो क्या होगा जी, यीशु का खून तुमको मौत से छुड़ाएगा। तो क्या हो रहा है जी बैतनिया में, बैतनिया में क्या हुआ, फसा का बर्रा क्या था, वो ये था उनके लिए याद आने के उनको एक दिन खुदा का बर्रा गुनाहों से रहाई देगा, ठीक जैसे मूसा ने जिस्मानी तौर पर उनको मिस्र से निकालकर मुल्क कनान में ले गया, वैसे ही खुदा का बर्रा जमीन पर जो पैदा होगा, जो बेदार होगा, वो जब इस दिन को मनाते थे याद करते थे कि एक दिन खुदा अपने बर्रे को भेजेगा जो उनके तमाम गुनाहों को साफ करके उस दुनिया से उनको कहां पर ले जाएगा जी, आल में बाला पर नए यरूशलम में उनका क्या हो जाएगा जी, मुंतकिल हो जाएंगे। और वहां पर ना रोक, ना मुसीबत, ना गलामी, ना कोड़े, ना रोना, ना दांतों का पीसना, कुछ भी ना होगा। तो यहां पर क्या रहा है शाम इस दिन में बुध में, छह आयत को देखते हैं 26वें बाद। और जब यीशु बैतनिया में शमौन कोड़े के घर में था तो एक औरत संगमरमर के इत्र दान में कीमती अतर लेकर उसके पास आई, और जब वो खाना खाने बैठा तो उसके सर पर अतर डाला, चिगिर दिए देखकर खफा हुए और कहने लगे ये किस लिए जाया किया गया, इसलिए ये जाया किया गया। यहाँ 12 के 12 शिविर तो मौजूद है यहाँ में, यहूदा अस्कर यूपी जो उस वक्त का अफगानजी था, जैसे आज चर्च का अफगानजी क्रिस हैरिस है, वैसे वो यीशु मसीह की फैमिली को जो हदिया जान देते थे रखता था अपने पास, वो यहाँ पर मौजूद है। ये तो बड़े दामों में बेहतर गरीबों को दिया जा सकता था। यीशु ने ये जानकर उनसे कहा कि इस औरत को दिख ना कर, दिख क्यों करते हो, मजाक क्यों डालते हो, इसे परेशान क्यों करते हो। इस पर इसने तो मेरे साथ भलाई की है, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास है लेकिन मैं तुम्हारे पास हमेशा ना रहूंगा, और इसने तो मेरे कफन की तैयारी के लिए अतर मेरे बदन पर डाला है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तमाम दुनिया में जहाँ कहीं इस खुशखबरी की मनाही की जाए, ये भी जो इसने किया है इसकी यादगारी में कहा जाएगा। हम इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यीशु ने हुक्म दिया था कि इस औरत ने जो किया है वो कभी भी भुला नहीं जा सकता। तो बुध की शाम, बुध के दिन क्या हुआ है, यीशु मसीह को साजिश हुई है, यीशु मसीह पर शमौन कोड़ी के घर में इस औरत ने कीमती अतर डाला है, और आगे क्या हुआ, इसी दिन यहूदा अस्करियोती क्या करता है, दिल में ठहरा देता है कि वो अपने आप को अमीर के हाथों में बेचेगा। और 14वीं आयत में लिखा है उस वक्त उन 12 में से एक ने जिसका नाम क्या था जी, यहूदा अस्करियोती, दोबारा कहेंगे यहूदा अस्करियोती, उसने अपने दिल में ठहराया क्या हुआ, जिसका नाम यहूदा अस्करियोती था, सरदार कहनियों के पास जाकर कहा कि अगर मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूं तो मुझे क्या दोगे। उसने अपने दिल में ठहरा लिया है कि वो यीशु को धोखा देगा, वो यीशु को पकड़वाएगा, और वो कहता है जाकर उन लोगों से जो यीशु से नफरत करते हैं कि तुम मुझे क्या दोगे कि मैं अगर यीशु को तुम्हारे हाथ में कर। उन्होंने उसे 30 रुपए तोल कर दे दिए और वो उसे लेकर اور وہ اس وقت سے اسے اس کے پکڑوانے کا موقع ڈھونڈنے لگا. تو یہ ہوا ہے اس رات, یہ ہوا ہے اس سارے دن میں. بدھ کے دن کیا کیا ہوا ہے جی؟ یسوع پر سازش ہوئی ہے, یسوع پر اثر ڈالا گیا ہے. جو تصویر ہے کہ باقی تمام شگرد اس بات سے واقف نہیں تھے, لیکن یہ عورت واقف تھی کہ وہ دفن ہونے والا ہے اور اس پر خوشبو لگائی جاتی ہے. ہم اپنے مردوں کو خوشبو اور عطر اور پھول چڑھاتے ہیں کہ ان کو بنایا جائے. تو سوال یہ ہے, یہودا نے اپنی روح کو ابلیس کے ہاتھوں میں بیچ دیا دنیا کے دھن اور کے لیے. ہم بھی ازمائے جائیں گے, ہماری ازمائش میں بہت کچھ آئے گا. اس لیے جب ازمائش آئے تو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی آپ کو اس پر نقل کر کے دکھایا ہے کہ کیا ہوتا ہے. ابلیس اپنی شرارت کا جھولا لیے پھرتا ہے اور وہ ہمارے درمیان, چاہے ہم عبادت میں ہوں, چاہے گھر میں ہوں, چاہے بازار میں ہوں, جہاں کہیں بھی ہوں, وہ ہم سے کہے گا کہ تم کیا لوگے کہ یسوع کا انکار اس کی فرما برداری کی بجائے نافرمانی کرو. مانگو, جو کچھ مانگو گے تم کو دے گا, اور وہ دینے کے لیے تیار ہے. اگر وہ یسوع کو یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ تم مجھے سجدہ کرے تو میں دنیا کی ساری شان و شوکت تجھے ایک پل بھی دے دوں گا, تو کیا وہ ہم کو نہیں ازمائے گا؟ وہ ہم کو بھی ازمائے گا. اس لیے وہ اپنے توڑے میں سے کسی کے گھر میں گئے, کسی کی قیمتی چیز ہے, وہ کہے گا چرا لو. وہ ہمارے دل میں ڈالے گا, گندی حرکت کرو, جھوٹ بولو, فائدہ اٹھاؤ, کوئی تمہاری عزت کرتا ہے اس کی عزت کا نجائز فائدہ اٹھاؤ. ابلیس کہے گا کیا لوگے, کیسے اس رات یہودا اسکریوتی میں ابلیس سما گیا. اس نے ارادہ کیا ہے, وہ اسے سکھا رہا ہے, وہ اسے کٹ پتلی کی طرح استعمال کرے گا. یہ شروعات ہے. جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی برے کام کا, بری سازش کا, تب بھی ہمارے پاس موقع ہوتا ہے کہ ہم مڑے. یہودا کے پاس موقع تھا, لیکن کل جب ہم دیکھیں گے کہ آخری فصح کی شام جب پھر یسوع نے اسے کہا کہ تم میں سے کوئی ایک مجھے پکڑوائے گا, یسوع جانتا تھا, باقی شگرد نہیں جانتے تھے, یہودا جانتا تھا, اسے موقع تھا, لیکن اس نے کہا نہیں. اور اس نے جو روپے پیسے لیے تھے وہ اپنا ارادہ کر دیا. آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم سب کے ساتھ بھی ابلیس ایسا ہی کرتا ہے. وہ ہمیں خوبصورت خیال دکھاتا ہے, منظر دکھاتا ہے, اس کی شان و شوکت پل بھر کی ہے, جیسے متی چار باب لکھا ہے کہ میں تجھے پل بھر میں, اس نے یسوع جی کو دنیا کی شان و شوکت دکھائی. اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کی اور شیطان کی بادشاہی میں فرق. یہ ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ شیطان کی بادشاہی ریت پر بھرے ہوئے مکان کی مانند ہے, خوبصورت نظر آئے گی, اچھی نظر آئے گی, لیکن وہ قائم نہیں رہے گی کیونکہ وہ آخری ہے. یسوع مسیح کی بادشاہی ٹھیک ویسے ہے پہاڑ پر بنانے والے گھر کے مانند, اس عقل مند آدمی کی طرح. اس میں بے شک ہمیں عارضی طور پر, دنیاوی طور پر وہ نظر نہیں آتا جو خدا ہمارے لیے رکھتا ہے, لیکن ہم چمکتی ہوئی چیز کو سونا سمجھ کر بہت دفعہ اس کے پیچھے جاتے ہیں. تو یہودا نے 30 سکوں میں یسوع جی کو اس رات بیچنے کا ارادہ کیا, مقبر بنا اور مقبری کے لیے وہ موقع ڈھونڈنے لگا کہ کیا کر. یہ کیوں آپ سب کو بتا رہا ہوں کہ بائبل مقدس ہمارے لیے خدا کا آئینہ ہے, اور اس آئینے میں ہم دیکھیں گے کہ داؤد نے کیا کیا, मूसा ने क्या किया, यूसुफ ने क्या किया और हमें क्या करना होगा, सैमसन ने, शमसून ने क्या किया और फिर पालूस ने क्या किया और फिर अलिशमा ने क्या किया और मरियम ने क्या किया और दूसरे शिगिर्दों ने क्या क्या किया है जिससे हम सीख कर सकते हैं ऐसे कि हम क्या करेंगे, क्योंकि शैतान हर एक के लिए अपने झोले में हमारी कैशों को हमें कैद करने के लिए, हमें पकड़ने के लिए वो अपना झोला लिए फिरता और कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है, किस तरह बिकोगे, चोरी में, झूठ में, फरेब देने में, लालच में, फदी करने में, नाकामी करने में, किस तरह बिकोगे, तुम मेरी बात मानो, प्लीज कहता है मैं तुमको क्या करूंगा जी, खुशहाल कर दूंगा। और वो खुशहाल कर सकता है आरजी तौर पर, आपको बताना चाहता हूं ग्रीस खुशहाल करेगा आरजी तौर पर। आज बहुत से मसीहियों ने वो मसीह के साथ रहते हैं, मसीह का नाम उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी रूह को अग्रीस के हाथ में भेजा हुआ। मुझे गैरी की ये बहुत प्यारी बात पसंद आती है, उसने कहा कि जब मैं अभी यीशु के पीछे भी नहीं चलती थी, मैंने 11 साल की उम्र में यीशु को कबूल किया था, उसके बाद मैं उस खोई हुई भेड़ की तरह भटकती फिर रही थी कि चरवाहे के पीछे जाने के बजाय बियाबान में थी। बेटी कहती है कि मैंने बियाबान में वो जिंदगी जो गुजारी उसमें मैंने कभी भी शैतान को सजदा नहीं किया, कभी भी अपनी रूह शैतान के हवाले में। उसने कहा कि मैं चोरों के साथ, मगरूरों के साथ, डाकुओं के साथ, ऐसे ऐसे जुर्म वाले लोगों के इर्द गिर्द रही, लेकिन मैंने उनके जुर्म में शरीक होना पसंद ना किया, कोई भी भेड़ की तरह भटकती रही, लेकिन अपने आप को अबलीस के हाथों में नहीं भेजा। याद रखें आज का दिन, वो आएगा कहेगा लो कोई नहीं देख रहा, झूठ बोलो, कोई नहीं कहेगा कि तुमने झूठ बोला है, और वो क्या करेगा जी, हमें गुमराह करेगा, जैसे उसने यहूदा इस्करियोती को गुमराह किया। यहूदा यीशु को धोखा देने के लिए, पकड़वाने के लिए क्या होता है जी, राजी होता है। तो ये क्या हुआ है जी, बुद्ध के दिन। अगले दिन हम देखेंगे क्या हुआ है यरूशलम की गली गली में, क्या हुआ है बैतनिया में, क्या हुआ है उस बाला खाना में, क्या किया गया उस शाम। सो आए हम खुदा के जुड़ चुके और आज गौर करें इस बात पर कि अगली अगर हमारे पास किसी भी रूप में आता है तो हम उसके ताबिया ना हो बल्कि यीशु जी की तरह कहने वाले बने, ऐ शैतान दूर हो, मैं तुझे यीशु के नाम से कहती हूँ, कहता हूँ ऐ शैतान दूर हो। जब चोरी करने को, जब गुनाह करने को, जब बेईमानी करने को, जब झूठ बोलने को, जब नाफरमानी करने को, जब बेहयाई के काम करने को, या किसी से नफरत करने को, या किसी की चुगली करने को, या किसी के ऐब निकालने को, जब अबलीस की कोई भी तस्वीर हमें वो काम जो खुदा नहीं चाहता करने को कहे, तो हम कहिए ऐ शैतान दूर हो यीशु मसीह के नाम में। खुदा बाप आज का कलाम हम सबके लिए बाय से बरकत हो, हम तेरे कलाम को याद रखें और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए, यीशु मसीह नासरी के नाम में सब को छू, बड़ी बरकत दे और आज सारे दिन में तू हफाजत और निगेबानी कर, ताकि हमारी रूह तेरे पाक रूह के ताबिया रहे और हम इब्लीस के झूठों में ना फंसे। यीशु के नाम में ये दुआ मांगता हूँ, आमीन।